Priya bhai, o bheno, namo buddhai, jai bhim. So I'm still alive.
May I be busy now?
I'm not feeling entirely well. But I thought it was important that I did give some dhamma for this retreat.
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिविर के लिए कुछ और धम्म देना चाहिए ऐसे मुझे लगता है।
And I'm improving, so I'm sure that tomorrow I'll be able to speak more fully.
तो मेरी यानी प्रकृति में सुधार हो रहा है, तो कल मैं अच्छा ही हो जाऊंगा आज के तुलना में।
I'll try not to leave as dramatically as I did the day before yesterday.
परसों के दिन जो मैं नाट्य रूपांतर या नाट्य पद्धति से जो मैं छोड़ा वैसे आज मैं नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को।
It's a very strange experience from my side.
मेरे लिए वो बहुत ही विचित्र अनुभव था।
I was suddenly in a completely different world.
अचानक मैं दूसरी दुनिया में था ऐसे मुझे लगा।
And then I was suddenly back in this world.
और फिर मैं तुरंत इस दुनिया में वापस आया।
So quite interesting, and maybe I'll have some reflections on that later.
ये बहुत रुचकर था, इसके ऊपर मैं बाद में चिंतन करूंगा।
But I want to focus our minds for this retreat.
तो लेकिन इस शिविर में जो हमारे मन है उन्हें मैं केंद्रित करना चाहता हूँ।
We're dealing with sadhana, of course, as our general heading.
तो मुख्य शीर्षक जो है हमारे शिविर का वो है साधना, जिसके साथ हम यानी डील कर रहे हैं।
And as I said on the first evening before I passed out, what we're particularly concerned with is dhammic death and dhammic rebirth in our sadhana.
तो मैं इस बात पे जोर दे रहा था जब पहले शाम को मैंने बात किया कि धार्मिक मृत्यु और धार्मिक पुनर्जन्म, इसके ऊपर हम जोर देंगे अपने अपने साधनाओं में।
What you're doing at ordination is committing yourself to dying dhammically.
दीक्षा प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि हम पूरी कोशिश करते हैं धार्मिक मृत्यु लेने की।
And of course that means being reborn dhammically.
इसका अर्थ यह होता है कि हमारा धार्मिक पुनर्जन्म हो।
That's essentially what's happening when you are ordained.
वही सार रूप से बात होती है जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं।
And of that, of course, is our function in helping people to prepare for ordination.
और यही हमारा कार्य है जब हम लोगों को दीक्षा देने के लिए तैयार करते हैं।
We're helping them to commit themselves to death and rebirth in the dhammic sense.
तो हम उनको मदद करते हैं उनके मृत्यु और पुनर्जन्म के लिए धार्मिक पद्धति से।
That's our job as ordination team members.
एक दीक्षा चमूह होने के नाते हमारा वह कार्य है।
But as we all know, you can't help somebody else to do something unless you're doing it yourself.
लेकिन जैसे हम जानते हैं कि आप किसी और को कुछ करने के लिए मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं उस चीज को नहीं करते।
So what we would like is that by the end of this event, everybody's much clearer about what it means to die dhammically and be reborn dhammically.
तो मुझे ऐसे लगता है कि इस शिविर के अंत में हम सब लोग इस बात से स्पष्ट रहे कि धम्म रूपी मृत्यु क्या है और पुनर्जन्म क्या है।
And especially that you can see how to practice that in your daily meditation.
और हम इस रूप से उसका प्रयास करेंगे या आचरण करेंगे हमारे रोज के धम्म जीवन में।
But not just in your daily meditation.
केवल आपके रोज के ध्यान में नहीं।
In the middle of your daily life, you need to be able to die and be reborn.
आपके बिल्कुल जीवन के केंद्र में आप कैसे धम्म रूप से मृत्यु लेते हैं और कैसे आप पुनर्जन्म लेते हैं इस तरीके से।
So if we're to understand this better, we need to understand more fully what it is that dies and what is reborn.
अगर हमें इसे पूरी तरह समझना है तो फिर हमें इस बात को भी समझना होगा कि क्या चीज है जो मरती है और कौन सी चीज है जिसका पुनर्जन्म होता है।
I think there's actually quite a lot of confusion about this.
इसके बारे में काफी भ्रांतियां या संभ्रमता लोगों में है।
But we need to be quite clear in theoretical terms.
तो हमें सैद्धांतिक रूप से स्पष्टता होनी चाहिए।
And we need to be quite clear in our experience.
और हमारे अनुभव के स्तर पर इसकी हमें स्पष्टता होनी चाहिए.
Because what we need to die to is with us right now.
क्योंकि जो चीज मरने के लिए मौजूद है वो अभी हमारे पास है.
And it's as if actually all the time rebirth is waiting to happen.
और हमेशा ही या हर वक्त या प्रतीक्षण जो पुनर्जन्म है वह हमारी राह देख रहा है.
So we need to feel this, to see this very clearly in our immediate experience.
तो हमारे तुरंत जो अनुभव है उसमें हमें इसे महसूस करना चाहिए, हमने उसे देखना चाहिए.
And in order to understand it, we've got to have a deeper understanding of our minds.
और अगर इसे समझना है तो हमारे मन की जो गहरी सोच है, समझ है, वह हमें समझनी होगी.
We need to understand what it is to be conscious.
हमें समझना है कि सचेत होने का अर्थ क्या होता है.
We need to understand in what way we distort our consciousness.
और हमें यह भी समझना होगा कि किस पद्धति से हम हमारी चेतना को भी मलित करते हैं या दूषित करते हैं.
Then we can begin to get rid of that distortion and see clearly.
तो जो हम नष्ट करते हैं अपनी चेतना को उसे हम अच्छी तरह समझेंगे और फिर उसे स्पष्टता से हम समझ पाएंगे.
So I'm going to use a very important verse from Anguttara Nikaya.
तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जो वाक्य या गाथा है अंगुत्तर निकाय की उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ.
We've just looked at it on a previous retreat, but we'll look at it again.
पहले के शिविर में हमने इसका अभ्यास किया लेकिन फिर से यहाँ हम उसे देख सकते हैं.
So in Anguttara Nikaya, the Buddha says, "This mind is luminous."
अंगुत्तर निकाय में बुद्ध ऐसा कहते हैं कि यह मन तेजस्वी है.
This mind means this mind.
यह मन का मतलब अभी जो हमारे पास जो मन है वह.
The mind that we are experiencing with now.
वह मन जो जिसका हम अनुभव अभी इस क्षण ले रहे हैं.
So the Buddha says it's luminous.
तो बुद्ध कहते हैं कि यह प्रकाशमान है या तेजस्वी है.
Well, if you ask, is your mind luminous? Well, what's your immediate thought?
अगर आप ऐसा पूछेंगे अपने आप को कि क्या आपका मन अभी प्रकाशित है या तेजस्वी है, आपका मत क्या है?
Well, luminous means shining, bright, clear, even pure.
Luminous का अर्थ यह होता है कि जो प्रकाशित है, प्रकर्षित हो रहा है, तेजस्वी है, शुद्ध है.
But is your mind like that?
क्या आपका मन वैसा है?
Well, if you're at all honest, you'll probably have to say no.
अगर आप प्रामाणिक हैं, तो आपको शायद फिर ऐसा कहना होगा कि नहीं.
So what is the Buddha saying when he says this mind is luminous?
तो क्या बुद्ध कह रहे हैं जब वो कहते हैं कि यह मन तेजस्वी है या प्रकाशमान है?
Well, he makes it clear.
तो बुद्ध उसे स्पष्ट करते हैं.
So this mind is luminous, but it is defiled by defilements that are added to it.
तो बुद्ध कहते हैं कि यह मन तेजस्वी है या प्रकाशित है लेकिन क्या हुआ, यह दूषित हुआ है आपकी कुछ मलित चीजों को इसमें सम्मिलित करके या इसमें मिला के.
The word in Pali for added is agantukehi.
मलित करना या दूषित करने के लिए पाली में जो शब्द है वह है अगुंतकेहि.
Which means in even in modern Hindi, a visitor.
जैसे हम जानते हैं कि आगंतुक का मतलब कोई भी यात्री या प्रवासी आता है उसे आगंतुक कहते हैं.
And especially a visitor you're not expecting.
और ऐसा मेहमान या ऐसा भेंटकर्ता जिसकी आप अपेक्षा नहीं करते, अचानक जो आ जाता है.
Well, so what is a visitor?
तो फिर जो भेंट करता है या जो भेंट देने वाला होता है उसका अर्थ क्या होता है?
Well, obviously a visitor is somebody who's visiting.
विजिटर या भेंट करता वह होता है जो आपको भेंट देता है.
But they don't live there.
लेकिन जो यात्री है या जो आपको भेंट देने के लिए आया है वो वहाँ रुकता नहीं है.
They come and they go.
वे आते हैं और वे जाते हैं.
They don't belong there.
वो उनकी वहाँ कोई मालकी या जागीर वहाँ नहीं होती.
So the Buddha says that the kleshas are like unexpected visitors.
तो बुद्ध कहते हैं कि जो क्लेश है वह अनपेक्षित भेंटकर्ता के जैसे हैं.
And those unexpected kleshas, those kleshas that are added to mind, obscure its luminosity.
तो यह जो क्लेश है जो अनपेक्षित है जो आपको भेंट देते हैं यह आपके प्रकाशित मन को धुंधला करते हैं.
So our minds are in their nature luminous.
तो हमारा मन स्वाभाविक या मूलतः इसका जो स्वभाव है यह प्रकाशित होना है या तेजस्वी है.
But added on to them is are the kleshas that hide their luminosity.
लेकिन अगर यह जो क्लेश है जो उसके ऊपर आते हैं और सम्मिलित होते हैं या इसके ऊपर हावी हो जाते हैं इससे उसकी प्रकाशितता धुंधली हो जाती है.
This is being compared with a mirror.
इसकी जो तुलना है यह तुलना आईने के साथ की गई है.
You know, a mirror just reflects what's there.
आईना जो है वह केवल प्रतिबिंबित करता है जो भी वह होता है.
But when dust settles on the mirror, you can't see clearly.
लेकिन अगर वहाँ पे धूल जम गई हो तो फिर आप जो भी प्रतिबिंब देखते हैं वह स्पष्ट नहीं होता है.
So the mind is naturally pure and clear.
तो मन जो है स्वाभाविकता शुद्ध है और स्पष्ट है.
But its real nature is hidden from us by the kleshas.
लेकिन इसका जो मुख्य या जो मूल स्वभाव है सच्चा जो स्वभाव है यह क्लेशों से ढक चुका है या अस्पष्ट है.
This is the basic theme we'll be working with.
यह मुख्य बात है जिसके ऊपर हम कार्य करने वाले हैं.
You could say that spiritual death means removing the kleshas.
आप ऐसा कह सकते हैं जो धार्मिक मृत्यु है वह क्लेशों को निकालना है या दूर करना है.
And especially removing the kleshas, the element of the kleshas that is attachment to self.
और क्लेश को नष्ट करना इसका मतलब यह है कि स्व आसक्ति को नष्ट करना.
And then rebirth is of course the mind in its luminosity just shining out.
और पुनर्जन्म वह है कि अपने मन को ही जो मूलतः तेजस्वी है उसे उजागर करना वह पुनर्जन्म है.
So what this means is that in our daily practice we need to be working to remove the kleshas.
क्या इसका अर्थ होता है जब हमारे दैनंदिन जीवन में अपने क्लेशों को हम दूर करते हैं.
And to experience the luminosity of our minds.
और अपने तेजस्वी मन का अनुभव लेने का फिर अर्थ क्या होता है.
Very obviously this is what's happening in the Vajrasattva practice that you're doing in the morning.
जो आप सुबह वज्रसत्व जो साधना कर रहे हैं स्वाभाविकता वही बातें उस साधना में हो रही है.
You experience Vajrasattva above your head.
आप वज्रसत्व को अनुभव करते हैं आपके सर के ऊपर.
If you like, he's the luminosity of the mind, but you're distanced from him.
आप ऐसा कह सकते हैं कि वह तेजस्वी मन है लेकिन आपसे वह अंतर में है या दूर है.
And your own body is filled with all the kleshas.
और आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो शरीर है वह क्लेशों से भरा हुआ है.
And so gradually you're purified by Vajrasattva's amruta.
अंततः क्या होता है कि आप जो वज्रसत्व का जो अमृत है उससे आप शुद्ध होते हैं.
So you experience yourself as Vajrasattva.
तो आप अपने आप को ही ऐसा अनुभव करते हैं कि आप मानो वज्रसत्व है.
In other words, you've removed the kleshas and the luminous mind shines out.
दूसरे शब्द में ऐसा कह सकते हैं कि आप क्लेशों को नष्ट करते हैं दूर करते हैं और तेजस्वी मन को आप उजागर करते
हैं.
इसलिए यह साधना हम सुबह करते हैं.
Bhante said that he wants all order members to have some experience of this practice.
Bhante ऐसा कहते हैं कि सभी जो संघ सदस्य है उसको उनको इसका कुछ अनुभव चाहिए.
Because it has a very powerful message.
क्योंकि इसका जो संदेश है यह संदेश काफी प्रबल है.
It tells us that our minds are pure if only we could get rid of the kleshas.
यह हमें यह दर्शाता है या बताता है कि हमारा मन जो है वह तेजस्वी है लेकिन अगर हम क्लेशों को दूर करते हैं.
So yes, this is the basic statement of the Buddhas.
यह बुद्ध का यानी मूलभूत विधान है.
But he goes on to say something also important.
लेकिन फिर से कुछ महत्वपूर्ण बातें वो बताते जाते हैं.
He says that if you don't understand this as it really is, you cannot develop your mind.
बुद्ध ऐसा कहते हैं कि अगर चीजें जैसी है वैसे ही आप अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप अपने मन का विकास नहीं कर सकते.
इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट द माइंड इज ल्यूमिनस बट डिफाइल्ड बाय एडवेंटिशियस डिफाइलमेंट्स देन यू कांट डेवलप योर माइंड.
वो कहते हैं कि अगर आप नहीं समझते हैं कि आपका मन तेजस्वी है मूलतः मूल स्वभाव से और यह मलित है आपके आगंतुक क्लेशों से तो फिर आप अपने मन को प्रकाशित नहीं कर पाएंगे.
And of course, if you do understand this, then you do make progress.
और अगर आप इसे समझते हैं तो फिर आप अपना विकास कर सकते हैं.
And then you are an Arya.
तो तब फिर आप आर्य होते हैं.
If you understand this and you work with it, then you're on the Aryan path.
और अगर आप इस बात को समझते हैं और इसके ऊपर प्रगति करते हैं तो फिर आप आर्य मार्ग पर हैं.
It's really very important we understand this.
यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे समझे.
The Buddha is talking about our minds now.
बुद्ध उस मन की बात कर रहे हैं जो मन अभी हमारे पास मौजूद है.
Our minds are really luminous.
हमारे जो मन है वह वाकई में तेजस्वी है प्रकाशित है.
But we don't experience that.
लेकिन हम उसका अनुभव नहीं लेते.
Because we cover it up with the kleshas.
क्योंकि हम इसको ढक देते हैं अपने क्लेशों से.
So this requires that we look a bit deeply into our minds.
तो थोड़ा गहराई से हमने अपने मन को देखना चाहिए.
Now when I say mind, I think you all know what I mean.
अब जब मैं मन कह रहा हूँ तो मुझे पता है या उम्मीद है कि आप सब लोग इसे जानते हैं.
At least broadly, you know what you mean by mind, huh?
मोटे मोटे तौर पर आप जानते हैं कि मन क्या है.
You've all got one.
आपके पास वो है.
If you haven't got one, then you're not here.
अगर आपके पास यहाँ मन नहीं है तो फिर आप यहाँ नहीं है.
You've got an awareness.
आपको सजगता है जागरूकता है.
You're able to distinguish the world around you.
आप भेद कर पा रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो दुनिया है उसके प्रति.
Because you've got a mind.
क्योंकि आपके पास मन है.
So what the Buddha said is that the understanding of this mind and working with it as it is what this Dhamma life is about.
बुद्ध ऐसा कहते हैं कि आपके पास जो अभी मन है और इस मन के ऊपर कार्य करना यही धार्मिक जीवन का सार है.
And it's this that we're committing ourselves to at ordination.
और जब हम दीक्षा लेते हैं तो इसी के ऊपर हम कार्य करते हैं.
And it's this that we're preparing other people to work with.
और लोगों को या अन्य लोगों को हम इसके लिए तैयार करते हैं.
And yes, people need to understand that this mind is luminous.
और लोगों ने या अन्य लोगों ने इसे समझने की आवश्यकता है कि यह जो मन है वह तेजस्वी है.
This mind is luminous, but it's covered over by defilements that are added to it.
यह मन तेजस्वी है लेकिन इसको हमने ढक दिया है क्लेशों के आवरण से.
In a way, you could say this is the structure of all the sadhanas that we do.
और यही एक रचना है सभी साधनाएं जब हम करते हैं उसकी.
If you visualize or imagine Shakyamuni in front of you, well, who is he?
अब जब आप शाक्यमुनि को आप अपने आगे कल्पित करते हैं तो फिर वे कौन है?
Well, of course, he's the founder of our tradition, the first person to realize enlightenment.
तो वे हमारे सभी परंपराओं के संस्थापक हैं. वे सम्यक संबुद्ध हैं जिन्होंने संबुद्धि की प्राप्ति सबसे पहले की.
He's also the luminous mind.
लेकिन वे तेजस्वी या प्रकाशमय मन भी है.
What makes him the Buddha is that he's fully realized the luminous mind.
बुद्ध ने क्या वाकई में प्राप्त किया कि उन्होंने यह जाना कि जो मन है यह पूर्णतः प्रकाशित है तेजस्वी है.
And in our sadhana practice, in our meditation, we're trying to get rid of what stands between us and the Buddha.
और हम हमारी साधनाओं में हम क्या करते हैं, हम उन बातों को रुकावटों को दूर करते हैं जो हमारे और बुद्ध के बीच जो होती है.
So that we realize luminous mind.
ताकि हम जो प्रकाशित या तेजस्वी जो मन है उसका साक्षात्कार करें.
Strangely, if you realize the Buddha's luminous mind, you realize your own.
यह भी एक विचित्र बात है. जब आप बुद्ध के तेजस्वी मन को जब उसका साक्षात्कार करते हैं तब आप अपने ही तेजस्वी मन का साक्षात्कार भी करते हैं।
Because mind doesn't belong to you or me or the Buddha or anybody else.
क्योंकि मन जो है यह आपका नहीं है, बुद्ध का नहीं है या और किसी का नहीं है।
Mind is just mind.
मन केवल मन है।
So these are quite big and difficult topics.
तो यह काफी बड़े और कठिन विषय है।
But I hope that you're getting some idea of what I'm talking about.
लेकिन मुझे आशा है कि आप जो मैं कह रहा हूँ उसकी कुछ कल्पना आपको आई होगी।
At the moment, probably it's a little bit mysterious.
अभी के क्षण के लिए यह थोड़ा रहस्यमय है।
That's okay.
यह ठीक है।
It's okay if you don't immediately understand what's being said.
जो कुछ भी मैंने अभी कहा यह अगर आप तुरंत नहीं समझ पाते तो ठीक है।
We'll continue to work with this so you begin to see what it means.
हम इसके साथ सातत्य से काम करेंगे ताकि आप इसे समझना शुरू करेंगे कि वाकई में इसका अर्थ क्या है।
In the afternoon session, you will do a meditation. I probably won't come. Srimala will lead a meditation, which you're just reflecting on that.
तो दोपहर के सत्र में जो हम ध्यान करेंगे श्रीमाला उसका नेतृत्व करेगी और आप उसका आप उसको अनुभव कीजिए उसका अनुभव लीजिए।
Just sit.
हम केवल बैठेंगे।
And then just every now and again श्रीमाला will remind you this mind is luminous.
और बार बार जो यह जो बात है कि हमारे मन तेजस्वी है श्रीमाला उसको आपको याद दिलाएगी।
She'll remind you that it's covered over by defilements.
यह आपको याद दिलाएगी कि यह क्लेशों से ढक चुका या आवृत है।
And well, you can see what arises in you when you hear those words.
और आप देखिए आपके मन में क्या उत्पन्न होता है या क्या जागता है जब आप इन शब्दों को सुनते हैं।
But and in the evening, of course, you'll have a chance to do your own sadhana.
और शाम को आप अपनी साधनाएं करते हैं।
And during that, you can try to see how what we're talking about now relates to the sadhana that you're doing.
और आप देखिए कि इसका संबंध क्या है जो भी साधना है आप अपने आपके आपकी करते हैं उसके साथ इसका संबंध क्या है।
So now I want to start looking at mind.
तो अभी मैं इस बात को देखना शुरू करना चाहता हूं कि मन क्या है।
You've all got a mind.
आप सबके पास मन है।
We have all got a mind.
हमारे सबके पास मन है।
But the mind is a very mysterious it's very mysterious.
मन जो है यह बहुत रहस्यमय है।
It's not easy to say what it is.
अब यह कहना बहुत कठिन है कि मन क्या है।
Well, why is it difficult to say what mind is?
क्यों यह कहना मुश्किल है कि मन रहस्यमय है।
It's easy to say what a tree is.
अब यह आसान है कि पेड़ कैसा है यह बताना।
It's easy to say what the ceiling is.
यह भी बताना आसान है कि छत क्या है।
Anyway, it's even easy to say what my hand is.
यह भी बताना आसान है कि मेरा हाथ क्या है।
Even what my eye is.
या मेरी आँख क्या है।
Why can't I say what mind is?
क्यों मैं नहीं यह बता सकता कि मेरा मन क्या है?
Well, the answer is that the mind is not an object.
उत्तर यह है कि मन कोई वस्तु नहीं है।
There's a very famous story in the songs of Milarepa about this.
Milarepa के कविता में एक बहुत सुंदर कहानी है।
Milarepa met a young shepherd boy.
Milarepa जो है वह एक जो मेंढपाड़ का मतलब मेंढपाड़ गडरी गडरी जो होता है उसे मिलते हैं मिलारेपा।
He looked after goats and sheep.
जो भेड़ बकरियां है उसे वे उसकी देखभाल करते हैं।
She's a very very simple boy.
वो बहुत ही यानी सीधा साधा लड़का था।
He hadn't even been to KG.
वो यानी पहली कक्षा में भी कभी गया नहीं था।
There was no KG at that time.
क्योंकि वहाँ कोई कक्षा ही नहीं थी।
Completely illiterate, didn't know anything.
पूरी तरह वो अशिक्षित थे और उन्हें कुछ नहीं पता था।
Just living in a village right up in the mountains.
एक छोटे से गांव में एक पर्वत के यानी पास वो रहता था।
And his job every day was to take the sheep and goats up into the mountains to find some grass.
तो जो भी घास है वो अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाना यही उसका रोज का काम था।
And while he was there, he met this very strange figure.
और जब वे जंगल में थे यानी ये बच्चा जब जंगल में था तब इस विचित्र जो व्यक्ति है इससे उनकी मुलाकात उसकी मुलाकात हुई.
Wasn't the jungle, it was up in the mountains.
पर्वत के ऊपर वे थे.
And he met this strange, he's very thin.
वो मिला रहेगा.
This figure.
वो जो व्यक्ति था वह व्यक्ति बहुत पतला था.
His skin was slightly green.
और उस व्यक्ति की जो त्वचा थी वह थोड़ी हरी थी.
Because he'd eaten lots of stinging nettles and that made his skin green.
और वो जो फल जो उन्होंने खाए थे उस फल के वजह से उनकी जो त्वचा थी या जो चमड़ी थी वह हरी हो गई थी.
And he looked a bit wild, long hair.
वो थोड़े जंगली नजर आ रहे थे. उनके बालूल बड़े थे.
And very intense eyes.
और उनकी जो आंखें थी वो काफी गहरी थी.
So the shepherd boy had never seen anybody like that before.
तो यह जो गडरी था इस गडरी ने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा नहीं था.
So he started asking him questions.
तो उन्होंने उसको सवाल करना शुरू किया कि सवाल पूछना शुरू किया.
And he asked him, well, where do you live?
उन्होंने उसने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं.
And he said, my home is in the mind.
उन्होंने कहा कि मेरा जो घर है वो मेरा मन है.
So he said, okay, but how do you live? What's your work?
तो वो कहते कि कैसे आप रहते हैं आपका काम क्या है.
Where are your sheep and your goats?
आपके जो भेड़ बकरियां है वो कहाँ है.
So Milarepa said, well, I'm my sheep and my goats are my mental states.
उन्होंने कहा कि मेरे जो भेड़ बकरियां जो वो है वो मेरी मानसिक स्थितियां है.
So then the shepherd boy, getting more and more puzzled, said, well, how do you eat?
तो वो जो बच्चा था वो और कंफ्यूज हो रहा था या संभ्रमित हो रहा था. उसने बोला कि आप खाते क्या है.
So Milarepa said, I'm eating the fruits of the Dhamma.
उन्होंने कहा कि मैं धम्म के जो फल है उन्हें खाता हूँ.
So the shepherd boy completely confused.
तो वो जो बच्चा था वो पूरी तरह संभ्रमित हो गया.
So he said, well, you say that your home is is the mind.
आपने कहा कि आपका जो घर है वो आपका मन है.
And so where is that?
उन्होंने कहा वो कहा है.
Well, Milarepa said, well, you know, you've got a mind.
तो Milarepa ने कहा आपको पता है आपके पास आपका मन है.
So the shepherd boy said, but yes, but what is this mind?
तो उस बच्चे ने कहा कि ठीक है लेकिन मन क्या है.
So Milarepa said, well, you go away and reflect.
तो उन्होंने कहा कि आप जाइए और आप उसका चिंतन कीजिए.
You try and find mind and tell me how big it is, how much it weighs, what color it is.
तो आप जाइए और देखिए या ढूंढिए आपका मन कहाँ है, कितना बड़ा वो है, इसका रंग क्या है और इसका वजन कितना है.
So the shepherd boy said, okay.
तो उस गडरी ने कहा ठीक है.
And he went off into the hills.
वो पर्वत पे ऊपर चले गए.
And a few days later, he met Milarepa again.
तो कुछ दिनों के बाद वह जो बच्चा है बाद में और फिर से एक बार Milarepa को मिला.
And Milarepa asked him, well, did you find your mind and what is it like?
तो Milarepa ने उनको पूछा कि क्या आपको आपका मन मिला, कैसा है आपका मन या कैसा मन है.
And the shepherd boy said, well, yes, I didn't have to look for my mind because it's always there.
और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मन को खोजने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा ही वहाँ है.
And he said, my mind has no weight or no color.
उन्होंने कहा मेरे मन का कोई वजन नहीं है, कोई रंग नहीं है.
And it's infinite.
और यह असीम है.
So in this way, the Buddha, the Milarepa, led the shepherd boy to a direct experience of his mind.
इस प्रकार से Milarepa ने वो जो गडरी था या वो जो बच्चा था उसके उसको मार्गदर्शित किया सीधा अपने मन के संपर्क में आने के लिए.
And the shepherd boy went up into the mountains and he just disappeared for 3 months.
और वो जो बच्चा था वह ऊपर पर्वत पे चला गया और वो यानी अदृश्य हो गया था.
So the villagers found Milarepa and said, well, what have you done with our shepherd boy?
तो वो जो गांव वाले जो थे वो जब Milarepa को मिले तो उन्होंने गांव वालों ने Milarepa को पूछा कि आपने उस बच्चे के साथ क्या किया.
So Milarepa took them to where the shepherd boy was sitting.
तो उन लोगों को Milarepa ने उस जगह पे ले गए जहाँ पे वो बच्चा था.
And he was just sitting in meditation, experiencing his luminous mind.
वो बच्चा वहां बैठा था और अपने जो तेजस्वी या प्रकाशमय जो मन था उसका अनुभव ले रहा था.
So the mind has no features.
तो मन के कुछ लक्षण नहीं होते.
It has no dimensions.
इसके कुछ आकार या आयाम नहीं होते.
The mind is what experiences the world.
मन वह है जिसका हम अनुभव लेते हैं या दुनिया का जो हम अनुभव लेते हैं.
You cannot experience the mind.
आप मन का अनुभव नहीं ले सकते.
It's said to be a bit like the eye cannot see itself.
ऐसा कहा जाता है कि आप अपने आंख को नहीं देख सकते.
If you could say, well, yes, I've seen my eye. I've looked in a mirror.
आप ऐसा कह सकते कि हाँ मैंने मेरी आंख को देखा, मैंने आईने में मेरी आंख को देखा.
But of course, you didn't see your eye. You saw a reflection of your eye.
लेकिन आपने वास्तविक रूप से अपनी आंख को नहीं देखा, आपने अपनी आंख का प्रतिबिंब देखा.
So it's the same with mind.
यही मन के साथ है.
You can think about mind.
आप मन को सोच सकते हैं.
But it's not actually mind that you're thinking about.
लेकिन यह वास्तविक मन नहीं है जिसको आप सोचते हैं.
It's a thought about mind.
यह विचार है मन मन का या मन का किया हुआ यह विचार है.
Mind is what does the experiencing.
मन वही करता है जिसका हम अनुभव लेते हैं.
Now, if this doesn't make immediate sense to you, start thinking about it.
अगर इसका आपको कुछ तुरंत अनुभव नहीं आ रहा हो या कोई मतलब नहीं निकल रहा हो तो आप इसके बारे में सोचना शुरू कीजिए.
What is mind?
मन क्या है?
Bring me your mind.
आपके मन मेरे पास लाइए.
If you can bring me your mind, I'll give you a lot of money.
अगर आप आपका मन मेरे पास लाएंगे तो मैं आपको बहुत पैसा दूंगा.
Maybe we could do an IDT fundraising venture. But yes, you won't be able to.
लेकिन आप वो कर नहीं पाएंगे.
Mind has no features.
मन के कोई लक्षण नहीं होते.
It's not even yours or mine.
मन आपका या मेरा नहीं होता है.
It's just mind.
यह केवल यानी मात्र मन होता है.
It's the recognition of this that marks the real entry into the Dhamma life.
और इस बात की पहचान करना या इसको जानना यही एक विशेष प्रवेश होता है अपने धम्म जीवन में.
Usually we have a very limited idea of what mind is.
अक्सर हमारी जो धारणाएं होती है मन के बारे में वो काफी संकुचित होती है.
But mind is vast, infinite, indefinable.
लेकिन मन जो है यह अपरिभाषित है, असीम है और इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती.
But we don't experience it like that.
लेकिन जैसा यह है वैसा ही हम उसका अनुभव नहीं लेते.
Just occasionally we get a glimpse of it like that.
कभी कभी इसकी कुछ झलक हमें मिल जाती है.
In a way that's what we're, well, that is what we're trying to achieve in the sixth stage of the six element practice.
छह धातुओं के ध्यान में जो अपनी जो जो छठा चरण होता है उसमें हम इसका अनुभव लेने की कोशिश करते हैं.
We're letting go of the identification of the mind with the body.
हम इस अनुभव को छोड़ने की कोशिश करते हैं कि मन की जो हम पूरी पहचान शरीर से ही जो करते हैं.
So what do we experience?
तो क्या हम अनुभव करते हैं?
We experience mind as indefinable, without features.
हम मन को इस प्रकार से अनुभव करते हैं जो अपरिभाषित है और असीम है.
There's a very important experience in Bhante's life that might give us some approach to this.
बंते के जीवन का ऐसा कुछ उदाहरण है शायद इसको एक दृष्टिकोण उससे मिल सके.
And you might recognize this in your own experience to some extent.
और आप अपने अनुभव में यानी इसको इसका अनुभव ले सकते हैं.
You know that Bhante was born in London.
आप जानते हैं कि भंते का जन्म लंदन में हुआ.
You know that he was born into a relatively poor working class family.
एक ये जो कामगार वर्ग है उस कामगार परिवार में उनका जन्म हुआ.
That his family had no great education.
उनके जो उनका जो परिवार था वो काफी यानी सुशिक्षित नहीं था.
But Bhante himself developed a very strong interest in reading.
लेकिन भंते ने बहुत ही प्रबल जो अपना इच्छा जो है वह पढ़ने में या वाचन करने में लगाई.
And he used to go to the public library and borrow lots of books.
और वे जो जाहिर वाचनालय जो पब्लिक लाइब्रेरी है वहां जाते थे, वहां पढ़ते थे.
In Britain there's a very good public library system so you can borrow books free.
ब्रिटेन में पब्लिक लाइब्रेरी का सिस्टम अच्छा है जहां से हम किताबें ले सकते हैं.
So Banta used to go two or three times a week and get a big stack of books, read them and then bring them back and change them.
तो दो तीन किताबें वो भंते रोज ले जाते थे, पढ़ते थे, वापस लाते थे और दूसरी किताबें ले जाते थे.
At this point he's about 13 or 14 years old.
उस वक्त भंते की जो उम्र थी या आयु थी वह 13 या 14 साल की थी.
So he said that one day he was walking to the library with a pile of books.
तो एक दिन वह किताबें लेकर लाइब्रेरी में जा रहे थे.
And he'd been very interested in the question of consciousness.
और उनका जो सवाल था उनके मन में वह था चेतना का सवाल, कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं.
And he was particularly interested in the fact that he saw things from his point of view and other people saw it from their point of view.
तो क्या एक महत्वपूर्ण चिंतन उनके मन में आया कि उन्होंने चीजों को अपने दृष्टिकोण से देखा और लोग चीजें उनके दृष्टिकोण से देखते हैं.
You know, I'm here, I'm looking at you.
जैसे कि मैं यहाँ हूँ, मैं आप सब लोगों को देख रहा हूँ.
I've got a certain point of view.
मेरा एक विशिष्ट दृष्टिकोण है.
My own feelings, my own experiences is present for me.
मेरे जो अनुभव है, मेरी जो भावना है, यह मेरे लिए मौजूद है.
But each and every one of you is looking from your own point of view.
लेकिन आप भी अपने दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे हैं.
And your own experience is behind your present experience.
और आपके जो अनुभव है वह आपके जो अनुभव हो रहे हैं उसके पीछे है.
So Bante found this quite strange.
तो बंते को यह जो विचार था यह विचित्र लगा.
How is it that I'm identified with Subhuti and not with Maitreya Nagarjun?
यह ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं अपने आप को सुभूति करके अनुभव कर रहा हूँ और मैत्रीवीर नागार्जुन करके नहीं?
Why is my consciousness here rather than there?
क्यों मेरी जो चेतना है वो यहाँ है बजाय के वो वहाँ है?
And it's as if he refused to accept this.
और उन्होंने उसको यानी स्वीकार कर अस्वीकार किया या स्वीकार करने से नकारा.
He's just 13 or 14, don't forget.
वे केवल 13 या 14 साल के थे.
So as he's walking down the road, he's thinking, no, I must get out of this consciousness and into the minds of other people.
तो उनको ऐसे लगा कि मैंने इस चेतना से बाहर निकलना चाहिए और औरों की चेतना में जाना चाहिए.
And suddenly he said it was as if the noise of the traffic and the people on the pavement became very distant.
और उनका यह भी अनुभव था कि जो लोग इर्द-गिर्द चल रहे थे या जो भी जो रहदारी थी उसका जो आवाज था वह दूर हो गया उनसे.
And quite unimportant, insignificant.
और वह उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा.
And he said his experience was that he was walking through mind.
और उनका यह अनुभव था कि वह मन के द्वारा चल रहे हैं.
Not his mind, mind.
वह उनका मन नहीं था, एक जो विशाल मन है उसमें वो चल रहे हैं.
As if this mind, this vast mind was completely still and he was walking through it.
एक बहुत ही विशाल या असीम ऐसा मन जो स्थिर है और उस मन में वो चल रहे हैं.
So it ceased to be identified with little I mind.
तो जो स्व केंद्रित जो मन है वह स्व केंद्रित मन से उसकी पहचान नहीं थी.
And he'd become aware of the vastness of mind.
और वे जो विशाल मन का जो अनुभव है उसके बारे में जागरूक हुए.
The luminous nature of mind.
जो मन का जो स्वभाव है जो तेजस्वी है.
The pure nature of mind.
जो मन का शुद्ध स्वभाव है उससे.
So that was his first major experience, if you like, of the Dhamma.
तो ऐसा हम कह सकते हैं धम्म का वो उनका पहला प्रमुख अनुभव था.
At that time he knew nothing about the teachings of the Buddha.
उस वक्त उनको बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं था.
Or only very in a very limited extent.
या बहुत ही कम मात्रा में उनको उसकी जानकारी थी.
But he had this experience that the Buddha himself describes.
लेकिन ऐसा उनका अनुभव था जो बुद्ध ने स्वयं यानी विश्लेषित किया है.
Which is very interesting.
यह बहुत रुचकर है.
It tells us one thing particularly.
एक बात विशेष रूप से हमें यहाँ यानी ज्ञात होती है.
What Buddhism is about is not Buddhist.
यह महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्ध धर्म जिसके बारे में है उसका अर्थ बौद्धों के बारे में ऐसा नहीं है.
It's human. It's just about consciousness itself.
यह चेतना के बारे में है, यह उसके अपनी चेतना के प्रति है.
Yes, the Buddha Dhamma has a particularly clear and direct way of understanding it.
बौद्ध धर्म के पास यह नजरिया है कि प्रत्यक्ष रूप से हम इसे समझ सकते हैं.
But the experience itself is not confined merely to Buddhists.
लेकिन उसका जो अनुभव है वो केवल बौद्धों के लिए ही समीप है, ऐसा नहीं है.
So Bhante had this experience before he was formally speaking a Buddhist.
यह भंते का अनुभव था जब वे औपचारिक रूप से बौद्ध नहीं थे.
Of course, it may be that he'd been a Buddhist before, but that's another question.
अब उसके पहले वे बौद्ध होंगे, यह दूसरा प्रश्न है.
So anyway, what I'm talking about is this experience of letting go of your limited idea of yourself and experiencing the vastness of mind.
तो हमारी जो यह संकुचित धारणा है स्व के प्रति, उसको हमने त्यागना चाहिए या जाने देना चाहिए, और जो हमारा असीम मन जो है उसका अनुभव लेना चाहिए.
Not hamara, it's the vastness of mind itself.
जो मन का जो स्वभाव है असीम, उस स्वभाव को हमने अनुभव करना चाहिए.
At this point, it's not your mind, my mind, our mind.
और इस बिंदु पर यह मेरा मन या हमारा मन या किसी का मन नहीं होता है.
It's just mind.
यह केवल मन.
And you may get some feeling for that in the sixth stage of the six element practice.
तो चौथा जो चरण होता है छह धातुओं के ध्यान का, उस वक्त आप इसका अनुभव कर सकते हैं.
And the feeling you get is that mind is there.
और अनुभव आपका यह होता है कि यह जो मन है वो वहां मौजूद होता है.
If you could only relax into it, that mind is there.
और अगर आप उस मन में अपने आप को स्वस्थ कर पाते हैं तो वह मन वहां मौजूद है.
It's just there waiting, as it were, to be experienced.
वो केवल वहां प्रतीक्षा कर रहा है आपके वैसे अनुभव को आने के लिए.
But what we do is we restrict mind by identifying it with I.
लेकिन क्या हम करते हैं, अपने मन को हम संकुचित करते हैं स्व से उसकी पहचान करके.
So this is going to be our major theme during these days.
तो यह हमारी मुख्य थीम होगी आने वाले दिनों में.
We're going to be looking at the nature of mind.
हमारे यानी जो मन का जो स्वभाव है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे.
And the nature of mind is luminous.
और मन का जो स्वभाव है वह तेजस्वी है, प्रकाशित है.
But its true nature covered over by the kleshas.
लेकिन उसका जो मूल स्वभाव है यह क्लेशों से ढक चुका है.
So we need then, of course, to understand how this defilement takes place.
और हमें इस बात को समझना है कि कैसे यह जो आगंतुक जो क्लेश है उसे हम जाने.
And I'm just going to spend a few minutes now before concluding, just giving you a little bit of an idea of what the mind is like.
तो मैं कुछ मिनट आपको दूंगा कैसा यह मन होता है यह जानने के लिए.
You could say that there's an obvious level of mind that we all experience.
अब ऐसा हम कह सकते हैं कि एक स्वाभाविक स्तर होता है हमारे मन को अनुभव करने का.
And that is sense awareness.
वह होता है हमारी इंद्रिय जन्य सजगता.
I look at something.
मैं किसी चीज को देखता हूँ.
The light from the object hits my eye.
वह जो प्रकाश है वह मेरे आंखों को टकराता है.
And through the optic nerve, a signal is sent to the brain.
और जो हमारे इंद्रिय होते हैं या जो जिसे हम ऑप्टिक नर्व करते हैं उससे वह जो सिग्नल है वह हमारे मस्तिष्क को भेजे जाते हैं.
And somehow an image, a visual image, appears in my mind.
और किसी प्रकार से वह जो प्रक्रिया जो होती है उससे एक दृश्य कृति जो होती है वह निर्माण होती है.
This is the basic level of mind that we all experience.
यह एक मूल स्वभाव है मन का जो हम सब लोग अनुभव करते हैं.
It's empty. I stopped right here. So vijnana usually in the Buddhist context means sensory awareness.
तो विज्ञाना जो है बौद्ध परिपेक्ष में वह है इंद्रिय जन्य चेतना.
And of course that's eye, ear, nose, tongue, body.
वे सब.
But of course in Buddhist analysis there's an extra sense which is the mind sense.
लेकिन बौद्ध परिपेक्ष में एक अधिक भाव होता है. That is
mind sense.
मन का भाव.
So the mind can remember images from the past.
ताकि मन जो है वह जो गतकालीन जो कृतियां है या आकृतियां है उसको याद कर पाती है.
The mind can imagine things happening in the future.
मन इसकी कल्पना कर सकता है कि क्या भविष्य में घटित होने वाला है.
According to Buddhist tradition, the mind can even reach the minds of others directly.
बौद्ध परंपराओं के अनुसार ऐसा भी कहते हैं कि एक मन दूसरे मन में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश भी कर सकता है या पहुंच सकता है.
Which is a very interesting question.
वो बहुत ही रुचकर सवाल है.
But we won't go into it now.
अब उसमें हम जाने वाले नहीं है.
So there's that level of mental activity, mind.
तो यह मन का स्तर अपनी मानसिक क्रियाओं का.
That's the most obvious level of mind.
यह काफी मूलभूत या स्वाभाविक स्तर है मन की क्रियाओं का.
But of course, the mind at this level just gathers information.
लेकिन मन इस स्तर पे क्या करता है? केवल जो जानकारी है उसको ही आकलन करता है.
And that information well is useless unless it's formed or shaped.
लेकिन वह जानकारी यानी निष्क्रिय होती है या उसका कुछ अर्थ नहीं होता है जब तक हम उसका कुछ आकार नहीं लेते.
So underneath you could say that the sense consciousness is an organizing mind.
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह जो इंद्रिय प्रधान जो चेतना है इसके अंतर्गत एक नियोजन करने वाला मन है.
The manas interprets our sensory experience.
तो हमारे जो इंद्रिय जन्य जो अनुभव होते हैं उसमें जो मानस होता है यह मानस उसकी विवेचना करता है.
So that all the time the information we're taking in, we're interpreting.
तो हमेशा ही जो जानकारी इंद्रिय जन्य मन जो लेता है यह मानस उसकी विवेचना करता है.
We're saying this is a shrine hall.
जैसे हम कहते हैं कि यह पूजा स्थान है.
Subhuti is giving a talk.
Subhuti talk दे रहे हैं.
You're doing your best to understand what I'm saying.
आप पूरी कोशिश कर रहे हैं समझने की जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ.
So all the time you're taking the information that you get and forming it into a pattern.
तो आप क्या कर रहे हैं सारी जो जानकारी है उसे आप ले रहे हैं या गृहित ग्राह्य कर रहे हैं और उसको आप विवचन करने की कोशिश कर रहे हैं.
So there's an element, a dimension of the mind that's always taking information, fitting it into a pattern, making something of it.
तो हमारे मन का एक ऐसा विशिष्ट आयाम है जो सारी जानकारियों को लेता है और भिन्न भिन्न आकार में इसे बांटता है.
You can notice this to some extent.
आप इसको देख सकते हैं कुछ हद तक.
You can notice it at work, for instance, when to begin with you're not sure what's happening.
ऐसा आप कह सकते हैं कि कुछ बातें होती है आपको पता नहीं होता है कि वाकई में क्या हो रहा है.
You see somebody coming up the steps.
जैसे आप देखते हैं कि कोई इधर आ रहा है.
And you're not sure who it is.
और आपको पता नहीं है कि वो कौन है या व्यक्ति कौन है.
And you can watch manas trying to decide.
और तब आप देखते हैं कि आपका जो मनस है वह कोशिश कर रहा है उसे जानने की या पहचानने की.
Oh, it's Jayamani. No, it's Abhayadana.
तो यह जयमणि है या अभयदाना है या कौन है?
And the strange thing is when your manas says, oh, it's Abhayadana, you see it as Abhayadana.
तो जब आप ऐसी कोशिश करते हैं कि यह अभयदाना है तब आप इस बात की यानी खातरी भी कर लेते कि यह अभयदान्य ही है.
And then later you realize, no, it was Jayamani. But for a while you'd actually seen Abhayadana.
बाद में शायद वो जयमणि हो सकती है, लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि यह अभयदाना है.
Or you see a shape on the ground.
या कोई आकार या आकृति आप जमीन पर देखते हैं.
And you think, oh, is what's that? Is that a snake?
और आप देखते हैं क्या यह सांप तो नहीं है.
And you think, yes, it's a snake.
अब आप जानते हैं कि हाँ यह तो सांप है.
And you even see it move a bit like a snake.
और आप देखते हैं कि सांप की भांति यह यानी हलचल भी करता है.
And then you realize it's just a stick.
और आप देखते हैं कि यह केवल कोई लकड़ी थी.
But manas is all the time trying to make sense of our experience.
तो मानस जो है इस तरीके से हमारे जो इंद्रिय जन्य अनुभव होते हैं उसका आकार या उसे अर्थ देने की कोशिश करता है.
It's a very very important part of our minds.
यह हमारे मन के बहुत प्रमुख भाग हिस्से है.
But there's another dimension to the mind which is much more difficult to understand.
लेकिन मन के और भी आयाम है जिन्हें समझना थोड़ा कठिन होता है.
And this is known as chitta.
और उसे हम चित्त कहते हैं.
You'll find these terms used differently in different contexts, but here I'm using them in this way.
यह जो शब्द है यह अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ एक तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ.
Chitta is the background of mind.
चित्त जो है यह मन की पृष्ठभूमि है.
Things come out of the depths of the mind.
चीजें जो है वह मन की गहराई से आते हैं.
You know, you're sitting doing your meditation.
जैसे आप बैठते हैं और ध्यान करते हैं.
Really concentrated on anapanasati.
आप आनापानसति का अनुभव लेते हैं.
Suddenly you start thinking about home.
और अचानक आप घर के बारे में सोचना शुरू करते हैं.
Or you know what's happening in your center.
या आपके केंद्र में क्या हो रहा है.
Where did that come from?
वो कहां से आया.
It just emerges into your mind.
यह तुरंत आपके मन में आ जाता है.
Then at night you sleep.
फिर रात को आप सोते हैं.
And you have dreams.
और आपको सपने आते हैं.
Where did they come from?
वो कहां से आते हैं.
They're not from what you're attending to, what you're looking at.
अब वो वहां से नहीं आते हैं जिसको आप आने देना चाहते हैं.
But images are emerging from deep in your mind.
लेकिन वो जो आकृतियां जो आती है वह आपके गहरे मन से आती है.
So this is something very important to be conscious of.
यह बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम जागरूक रहे या सचेत रहे.
The mind has depths that we can't see.
मन की कुछ ऐसी गहराइयां है जिसे हम देख नहीं पाते.
It's a bit like being in a boat on the ocean.
जैसे कि किसी समुद्र पे हम किसी बोट के ऊपर बैठे होते हैं.
You can see that the surface of the water.
आप देखते हैं कि जो पानी की जो पृष्ठभूमि है वो हलती है.
You can see the waves coming and going.
वो लहरें आती है और जाती है.
Maybe you can even see some currents moving in the water.
आप यह भी देखते हैं कि कुछ प्रवाह जो है वह पानी से गुजर रहे हैं या जा रहे हैं.
But what is going on in the depths of the ocean, you don't know.
लेकिन आपको नहीं पता है कि जो सतह है समुद्र का, उस समुद्र की सतह में या गहराई में क्या हो रहा है.
There are forces working in the depths of the ocean, you just don't see.
ऐसे कुछ प्रवाह या प्रबल बल होता है उसके यानी समुद्र के गर्भ में जिसे हम नहीं देखते.
So we need to become more aware of the mind's depths.
तो हमें जो मन की वो जो गहराई है उसके बारे में सजग होना आवश्यक है.
We're very much identified with sense consciousness.
हम बहुत ज्यादा अपनी पहचान जो है वह इंद्रिय जन्य जो मन है उससे करते हैं.
We have a little bit of awareness of manas.
और थोड़ा बहुत जो हमारी जो जागरूकता होती है वह मानस की होती है.
But we're much less aware of these depths.
लेकिन यह जो गहराइयां है इससे हम काफी यानी हमारी जो जागरूकता है वह काफी कम है.
And it's these depths that we really need to be working with.
और इन गहराइयों के बारे में हमें कार्य करना है.
So I'm going to finish because I've spoken for longer than I intended.
तो मैं जितना चाहता था उससे मैं ज्यादा बोला, तो मैं यहाँ रुकूंगा.
But I'm going to give you some homework.
लेकिन कुछ होमवर्क मैं आपको दूंगा.
I'd like you each to be conscious of your dreams.
आप अपने स्वप्न के बारे में सजग रहिए, जागरूक रहिए.
I want you to try to be aware of those dreams and to, in our daily reportings in, communicate that to others.
आपका जो दैनंदिन जो आपका रिपोर्टिंग है उसमें आप अपने स्वप्न को बताइए.
Not every detail, because sometimes there's so much detail.
हर चीज का विश्लेषण करना जरूरी नहीं है काफी, क्योंकि वहाँ काफी विश्लेषण हो सकता है.
But in communicating something of the flavor of the dream to others, you'll help yourself to become more aware of these depths.
तो जो मन की गहराइयां है जो स्वप्न के द्वारा आ रही है वह आप बताने की कोशिश कीजिए मोटे मोटे तौर पर.
And I'm going to give you some advice as to how to do this.
और मैं आपको कुछ मार्गदर्शन करूंगा, सलाह दूंगा कैसे आप इसे करें.
Because in Buddhist tradition, mindfulness in sleep is a quite important practice.
क्योंकि बौद्ध परंपरा में जो जब हम सोते हैं तब जो हमारी सजगता है वह महत्वपूर्ण है.
You can sleep fully, but you're mindful.
आप पूरी तरह सो सकते हैं लेकिन आप सजग हैं.
So the best way to do this is to immediately before you actually try to go to sleep, to do something like say a mantra or go for refuge, something that connects you with the Dhamma.
तो सोने से पहले आप ऐसी कोई भी बात कीजिए, त्रिशरण कीजिए या कुछ मंत्र कीजिए या कुछ भी कीजिए जो आपको धम्म के संपर्क में लाए.
But as soon as you wake up, try to reconnect with that.
और जैसे ही आप जागते हैं तो फिर उसके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिए.
If you go to sleep with a mantra, you're likely to wake up with it.
अगर आप मंत्र के साथ सोते हैं तो शायद ऐसा ही होता है कि आप मंत्र के साथ ही जागते हैं.
And then try to bring back any dreams that you've had.
और अगर कोई स्वप्न अगर है तो उस स्वप्न को वापस लाने की कोशिश कीजिए.
It doesn't matter what they mean.
इसका कुछ यानी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनका अर्थ क्या है.
In a way, they don't mean anything more than they are.
कभी कभी उनका कुछ भी अर्थ नहीं होता है जो वो दिखते हैं उसके तुलना में.
But they're putting you in contact with chitta, the underlying depths of the mind.
लेकिन वो आपको जो उसके जो अंतर्गत प्रवाह जो होते हैं, जो चित्त होता है उसके संपर्क में लाते हैं.
And I'm sure that will help us to get much greater depth in our practice during these days.
और यह हमें मदद करेगा हमारे साधनाओं से या जो भी साधनाएं आचरण कर रहे हैं उसके गहराई में जाने के लिए.
So I'm going to finish there.
तो मैं वहां रुकने वाला हूं.
Just to remind you, of course, that our chief effort is to understand what Dhammic death means and what Dhammic rebirth means.
हमारा प्रमुख उद्देश्य यह है कि यह जानना कि हमारा धार्मिक मृत्यु क्या है और धार्मिक पुनर्जन्म क्या है.
And we've looked at the Buddha's statement that the mind is luminous.
और हमने बुद्ध का यह विधान देखा कि मन जो है वह तेजस्वी है, प्रकाशित है.
And that its luminosity is covered over by defilements that are added to it.
और इसकी जो प्रकाशितता या जो तेजस्विता जो है यह जो आगंतुक जो क्लेश है उसके द्वारा ढकी हुई है.
And now we've started to look at the structure of mind.
और हमने फिर यह देखने की कोशिश की या शुरुआत की कि मन की फिर रचना कैसी है.
First of all, the ordinary level of sense awareness.
सबसे पहली या मूलभूत जो बात है वह इंद्रिय जन्य मन है.
Then the deeper level of interpretation.
और उसकी जो गहराई जो जिससे हम उसकी विवेचना करते हैं.
And then deep, deep down these depths of chitta.
और गहरे गहरे उसके पृष्ठभूमि में जो चित्त होता है वह.
And we've suggested that dreams are a way of connecting more firmly with that.
और हमने यह कोशिश की कि जो स्वप्न है उसके द्वारा हम उसके संपर्क में आ सकते हैं.
So now I'm going to ask you to meet in small groups.
तो अभी आप छोटे गुटों में मिलिए.
Men together, women together.
पुरुषों का ग्रुप और महिलाओं का ग्रुप.
And no more than five in a group.
पांच से ज्यादा एक ग्रुप में ना.
If yeah. And in those groups, First of all, just clarify, well, just report in briefly on how you are.
तो अपने ग्रुप में आप यह बताइए कि आप कैसे हैं.
And even to start to remember dreams.
और अपने सपनों को याद करने की कोशिश कीजिए.
And then just clarify what I've been talking about today.
और इसकी स्पष्टता कीजिए कि जो कुछ भी मैंने अभी यहाँ कहा है.
If things are not clear and you can't clarify them in the group, then you can raise questions tomorrow.
कल मुझे कुछ सवाल पूछिए अगर कोई बात आपको स्पष्ट ना हो आपके गुट चर्चा में.
And well, then try to see how this operates in your life.
और आप देखिए कि आपके अपने मन में यह कैसे काम कर रहा है.
Do you have any feeling or any experience of mind as luminous? This mind as luminous.
क्या आपको कुछ ऐसा अनुभव आ रहा है कि यह जो मन है यह तेजस्वी है?
Do you see how the defilements cover it up?
और आप देख रहे हैं कि कैसे क्लेश या जो भी दूषितता है मलिनता है इस मन को ढकी हुई है.
And you can begin to reflect on how that works in your sadhana.
और आप देखिए कि आपके साधना में इसका कैसा इस्तेमाल हो रहा है.
So I hope you've got enough to be working with.
तो मुझे आशा है कि आपको पर्याप्त मिला है जिसके साथ आप काम करेंगे.
Just talking about all this, I realize we're touching on very deep and important topics.
यह बात करते हुए मुझे ऐसा लगा कि हमने काफी गहराई से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को छुआ है.
So don't worry if it's not all clear immediately.
तो सारी बातें एकदम स्पष्ट ना हो तो इसके बारे में आप चिंता मत कीजिए.
If we can be a little bit clear by the end, that would be a good thing.
थोड़ी सी भी स्पष्टता अगर हमें अंततः आती है वह अच्छी बात है.
If we can be completely clear, then we'd be enlightened.
और यह बात पूरी स्पष्ट हो गई तो फिर हम शायद संबोधि को प्राप्त होंगे.
So thank you.